ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारतीय नीति के बारे में विश्व को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई भी स्थान अब सुरक्षित नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शताब्दी पहले शिवगुरी मठ में श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी, जिससे विकसित भारत की दिशा में राष्ट्र को प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेरणा राष्ट्र को सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है।
आज समाज का हर वर्ग हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इसने ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। इस आलेख में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। सरकार फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार से फसल वार अभियान शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर से सोयाबीन से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसान, वैज्ञानिक और संबंधित पक्ष एक साथ बैठकर सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री गाड़ियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना के अंतर्गत वैश्विक कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। ये आवेदन पोर्टल इस वर्ष 21 अक्टूबर तक आवेदकों के लिए खुला रहेगा। आज नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि इस पहल से देश स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के वाहनों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसराइल रक्षा बल IDF ने दावा किया है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद ईरान ने मिसाइलें दागी। IDF ने कहा कि उसने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों के एक नए प्रक्षेपण का पता लगाया है और उत्तरी इसराइल में सायरन बजने लगे हैं। ये इसराइल द्वारा ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमति जताने के कुछ ही समय बाद हुआ है। इसराइली मीडिया ने बताया कि रक्षा मंत्री इसराइल कैंट्स ने ईरान पर अमरीका और कतर द्वारा मध्यस्थता किए गए संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद ईरानी राजधानी तेहरान पर तीव्र हमले का आदेश दिया। इस बीच ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने राज्य मीडिया द्वारा दिए गए संक्षिप्त बयान में इसराइल के इस दावे का खंडन किया है कि उसने पिछले कुछ घंटों में इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। पश्चिमी एशिया में अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों में चिंता बनी रही, जिससे शेयर बाजार आज दिन के उच्चतम स्तर से पीछे हटकर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 82,055 पर बंद हुआ। निफ्टी 72 अंक की बढ़त के साथ 25,044 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।